एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक को समझने का नजरिया वाकई बदल सकती है।
हाँ, और शायद सबसे ज्यादा बहस भी इसी पर होती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं लिंडा वुडहेड की किताब क्रिश्चियनिटी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन की।
और देखिए, ये किताब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ईसाई धर्म सिर्फ मतलब कुछ देशों का धर्म नहीं है, ये एक ग्लोबल फोर्स है।
2 अरब से ज्यादा लोग इसे मानते हैं।
सही कहा।
लेकिन अक्सर हमारी जो समझ है वो या तो बहुत ऊपर ऊपर की होती है या फिर पुराने ढर्रे पर चलती है। वुडहेड हमें एक ताज़ा नजरिया देती हैं, समाजशास्त्रीय, कि ये धर्म असल में काम कैसे करता है। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इतिहास या धर्मशास्त्र नहीं है, ये इसे एक जीती जागती सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में देखती है। मतलब लोगों के जीवन में, समाज में, राजनीति में इसका क्या मतलब है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं।
और इस सफर में हमारी गाइड हैं लिंडा वुडहेड। अब वो कोई धर्म गुरु या प्रचारक नहीं है, वो धर्म के समाजशास्त्र की मतलब सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की एक जानी मानी ब्रिटिश स्कॉलर हैं। लैंकास्टर यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन, इन जगहों पर उन्होंने पढ़ाया है।
हाँ, और उनकी खासियत यही है ना, कि वो धर्म को सिर्फ आस्था या विश्वास के नजरिए से नहीं देखती। उनके लिए धर्म एक सामाजिक यथार्थ है, सोशल फेनोमेना।
बिल्कुल,
मतलब समाज का एक हिस्सा जिसे वैसे ही समझा जा सकता है जैसे हम राजनीति या अर्थव्यवस्था को समझते हैं।
उनका काम ये देखना है कि भाई आधुनिक दुनिया में धर्म कैसे बदल रहा है, लोगों की धार्मिक पहचान कैसे बन रही है, धर्म का जेंडर या राजनीति से क्या लेना देना है। और उनका नजरिया इसलिए भी खास है क्योंकि वो कोशिश करती हैं कि तटस्थ रहें। ना तो वो ईसाई धर्म का बचाव कर रही हैं, न ही उसकी आलोचना, एक समाजशास्त्री की तरह। उनका लक्ष्य है विश्लेषण करना कि लोग अपने धर्म को जीते कैसे हैं, संस्थाएं कैसे काम करती हैं, संस्कृति और राजनीति पर क्या असर होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो मुश्किल अकेडमिक बातों को भी बहुत आसान भाषा में समझाती हैं।
तो इस किताब का जो केंद्रीय विचार है, अगर एक लाइन में कहना हो तो वो क्या होगा?
शायद सबसे अहम बात यह है कि वुडहेड कहती हैं ईसाई धर्म कोई एक चीज नहीं है, ये कोई ठोस हमेशा एक जैसा रहने वाला ढांचा नहीं है।
अच्छा,
हाँ, बल्कि ये बहुत सारी अलग अलग गतिशील और लगातार बदलती हुई परंपराओं का एक बड़ा परिवार है, समझिए।
ये बात तो अपने आप में थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि हम तो अक्सर यही सोचते हैं कि किसी धर्म या संस्था की ताकत उसकी एकता में होती है ना, सब एक जैसे हों।
हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है, लेकिन वुडहेड कह रही हैं कि ईसाई धर्म की असली ताकत और 2000 साल तक टिके रहने का राज वो ठीक इसके उलट है। मतलब इसकी अंदरूनी विविधता और समय और जगह के हिसाब से खुद को ढाल लेने की जो इसकी अद्भुत क्षमता है, जिसे हम अनुकूलन क्षमता या अडेप्टेबिलिटी कह सकते हैं, उसी में इसकी ताकत है।
अच्छा, तो इस विविधता को समझने के लिए वो क्या करती हैं? क्या वो इतिहास बताती हैं शुरू से आखिर तक?
नहीं, वो कोई सीधा कालानुक्रमिक इतिहास नहीं बताती, बल्कि वो एक विषयगत मतलब थेमेटिक रास्ता चुनती हैं। वो कुछ मूल सवालों और विषयों पर ध्यान देती हैं जो ईसाई धर्म के लिए हमेशा से जरूरी रहे हैं।
जैसे कि
यीशु कौन है, ईश्वर की अवधारणा क्या है, वो जो जटिल त्रिमूर्ति या ट्रिनिटी की बात है, पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है, पाप और मोक्ष का क्या मतलब है, चर्च यानी संस्था उसका क्या काम है, और दुनिया में ईसाई धर्म का क्या असर रहा है और रहेगा।
तो इस तरीके से हम इसे सिर्फ अतीत की कहानी की तरह नहीं देखते।
बिल्कुल, बल्कि आज की दुनिया को आकार देने वाली एक जीवित शक्ति के रूप में समझ पाते हैं। वुडहेड का लक्ष्य यही लगता है कि हम 21वीं सदी के इस ग्लोबल माहौल में ईसाई धर्म की जटिलता और इसके लगातार होते बदलावों को महसूस कर सकें।
तो चलिए इन विषयों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत होती है उस व्यक्ति से जिसके बिना ईसाई धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यीशु।
हाँ, किताब के बिल्कुल केंद्र में यीशु है, लेकिन वुडहेड इस बहस में नहीं पड़ती कि असली ऐतिहासिक यीशु कौन थे, है ना?
नहीं, वो उस बहस में नहीं उलझती। इसके बजाय वो इस बात पर जोर देती है कि पिछले 2000 सालों में ईसाइयों ने यीशु को कैसे समझा है, उनकी कल्पना कैसे की है, और उनके जीवन और शिक्षाओं का मतलब क्या मतलब निकाला है।
और ये समझना जरूरी है क्योंकि यीशु की कोई एक छवि तो रही नहीं है। बिल्कुल नहीं, कभी उन्हें एक महान नैतिक शिक्षक माना गया, जैसे सुकरात या बुद्ध। कभी उन्हें ईश्वर का अवतार, दुनिया का उद्धारकर्ता माना गया, और कभी खासकर गरीबों और दबे कुचले लोगों के बीच उन्हें एक राजनीतिक मुक्तिदाता के रूप में देखा गया, जो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए।
और यीशु की इन्हीं अलग अलग व्याख्याओं से ही ईसाई धर्म के अंदर इतनी विविधता आई है।
हाँ, काफी हद तक जैसा यीशु को समझा गया वैसा ही ईसाई समुदाय का रूप बनता गया। ये दिखाता है कि शुरू से ही ईसाई धर्म में बहस और अलग अलग मत रहे हैं, कोई एक पत्थर की लकीर नहीं खींची गई थी।
ठीक है, यीशु के बाद अगला बड़ा सवाल आता है ईश्वर का। ईसाई धर्म की जो ईश्वर की अवधारणा है, खासकर त्रिमूर्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये अक्सर लोगों को बहुत रहस्यमयी लगती है, समझने में मुश्किल।
हाँ, तीन में एक, एक में तीन, ये गणित के हिसाब से तो पहेली ही लगती है, लेकिन वुडहेड इसे गणित के फॉर्मूले की तरह नहीं देखती। वो समझाती हैं कि ये ईश्वर के बारे में अलग अलग अनुभवों और सच्चाइयों को एक साथ कहने का एक तरीका है।
अच्छा, वो कैसे?
इसे ऐसे समझ सकते हैं, पिता वो ईश्वर है जो सबसे ऊपर है, जिसने सब कुछ बनाया, जो सर्वशक्तिमान है। पुत्र यानी यीशु वो ईश्वर है जो इंसान बनकर दुनिया में आया, जिसे हम व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं, जिसने दुख सहा। और पवित्र आत्मा वो ईश्वर है जो अदृश्य रूप से दुनिया में सक्रिय है, जो लोगों को प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, समुदाय को जोड़ता है। तो त्रिमूर्ति एक तरह से ईश्वर को एक ही समय में महान और व्यक्तिगत, दूर और पास, शासक और साथी, इन सब रूपों में देखने की कोशिश है।
और यहीं से वुडेट एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट पर आती हैं, पवित्र आत्मा या स्पिरिट की भूमिका पर। वो कहती हैं कि पवित्र आत्मा ईसाई धर्म के अंदर की जंगली शक्ति है।
हाँ, जंगली, अप्रत्याशित और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक शक्ति। ये वो पहलू है जो अक्सर नियमों और संस्थाओं के कंट्रोल से बाहर रहता है।
अच्छा,
बिल्कुल, ये सीधे व्यक्तिगत अनुभव, चमत्कारों, भावनाओं और करिश्माई ऊर्जा से जुड़ा है। ये वो शक्ति है जो किसी भी आम इंसान को सीधे ईश्वर से जुड़ा महसूस करा सकती है, बिना किसी पादरी या बिशप के जरिए। और इसीलिए ये अक्सर स्थापित संस्थागत चर्च के लिए एक चुनौती भी बन जाती है।
इसका आज के जमाने में सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? कोई है?
सबसे बड़ा उदाहरण है पेंटेकोस्टलवाद, पेंटेकोस्टलिज्म। ये ईसाई धर्म का वो रूप है जो पूरी तरह से पवित्र आत्मा के सीधे व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देता है, जैसे चमत्कार महसूस करना, ईश्वर से सीधे प्रेरणा पाना, अनजान भाषाओं में बोलना या बीमारियों से शिफा यानी हीलिंग पाना।
अच्छा,
और ये दुनिया भर में, खासकर ग्लोबल साउथ में, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ईसाई आंदोलन है। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत, भावनात्मक और अनुभवात्मक धर्म की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है, खासकर उन समाजों में जहां लोग स्थापित संस्थाओं से
मोह भंग महसूस करते हैं। हाँ,
हाँ बिल्कुल, जहां मोह भंग है।
ये चर्च और आत्मा के बीच का तनाव, ये वाकई दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। अब बात करते हैं ईसाई धर्म के एक और मूल सिद्धांत की, पाप और मोक्ष, सिन एंड सेल्वेशन। हर धर्म इंसान की मूल समस्या और उसके समाधान की बात करता है। ईसाई धर्म इसे कैसे देखता है?
ईसाई नजरिए से देखें तो पाप सिर्फ कुछ गलत काम करना भर नहीं है, ये एक ज्यादा गहरी स्थिति है ईश्वर से अलगाव की, एक टूटे हुए रिश्ते की। ये माना जाता है कि ये स्थिति आदम और हव्वा से शुरू हुई और पूरी मानवता पर असर डालती है। और मोक्ष या उद्धार इसका समाधान है, जो ईसाई विश्वास के अनुसार यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करने से मिलता है।
लेकिन मोक्ष का मतलब भी सबके लिए एक जैसा नहीं होता है ना? इसके भी अलग अलग मायने हैं।
सही कहा। वुडहेड बताती हैं कि मोक्ष के भी अलग अलग मायने हो सकते हैं। कुछ परंपराओं में इसका मुख्य मतलब है मृत्यु के बाद नरक की सजा से बचना।
ओके।
दूसरों के लिए ये इसी जीवन में नैतिक रूप से बेहतर बनने, ईश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की एक तरह की आज़ादी पाना है। तो ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ढांचा देता है, जो लोगों को अर्थ, आशा और दिशा देता है।
अब तक हमने व्यक्ति, आत्मा और विश्वास की बात की, लेकिन ईसाई धर्म का एक बहुत बड़ा संस्थागत पहलू भी है जिसे हम चर्च कहते हैं, बड़ी सी वाला चर्च। वुडहेड इस पर समाजशास्त्रीय नजरिए से कैसे बात करती हैं?
वो चर्च को उस व्यवस्था या संगठन के रूप में देखती हैं जो ईसाई धर्म को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है, उसे स्थायित्व देता है। इसमें एक साफ पदानुक्रम होता है, हायरार्की, जैसे पोप, बिशप, पादरी। इसमें विशेष धार्मिक क्रियाएं या संस्कार होते हैं, सैक्रमेंट्स, जैसे बपतिस्मा और कम्युनियन, और इसकी अपनी स्थापित परंपराएं, नियम और धर्मशास्त्र होते हैं।
कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, ये सब चर्च के ही अलग अलग संस्थागत रूप हैं। लेकिन क्या चर्च हमेशा अपने आदर्शों पर खरा उतरता है? वुडहेड यहाँ एक तनाव की ओर इशारा करती हैं, है ना, कोई खिंचाव है।
बिल्कुल, वुडहेड दिखाती हैं कि चर्च का एक आदर्श रूप है कि ये धरती पर मसीह का शरीर है, प्रेम और सेवा का समुदाय है, लेकिन इसकी एक वास्तविकता भी है कि ये एक मानवीय संस्था है।
अच्छा।
जिसमें शक्ति संघर्ष, अंदरूनी राजनीति और कई बार भ्रष्टाचार और अन्याय भी देखने को मिलता है। चर्च ने इतिहास में शिक्षा, कला, संगीत, समाज सेवा, इन सब में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन ये भी सच है कि ये उत्पीड़न और शोषण का साधन भी बनता रहा है।
तो ये चर्च यानी संस्था और आत्मा यानी व्यक्तिगत अनुभव के बीच का तनाव, ये लगातार बना रहता है। यही संघर्ष शायद ईसाई इतिहास को आगे बढ़ाता रहा है।
हाँ, ऐसा लगता है।
अब जरा देखते हैं कि दुनिया में ईसाई धर्म की भूमिका कैसी रही है।
ये भी एक दोधारी तलवार जैसी कहानी है। वुडहेड बताती हैं कि ईसाई धर्म के मानने वालों को एक दोहरा आदेश मिला है। एक तरफ दुनिया की मोहमाया से आध्यात्मिक रूप से अलग रहना है, दूसरी तरफ दुनिया में जाकर ईशु का संदेश फैलाना है, यानी मिशनरी काम करना है।
और इस दूसरे आदेश ने इसे दुनिया की राजनीति और शक्ति संरचनाओं से गहराई से जोड़ दिया है। रोमन साम्राज्य ने इसे अपनाया, फिर यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशवाद के साथ इसे दुनिया भर में फैलाया। कई बार इसने मौजूदा सत्ताओं को नैतिक और धार्मिक वैधता दी।
लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। बाइबल के संदेशों, खासकर न्याय, करुणा और बराबरी के विचारों ने कई मुक्ति आंदोलनों को भी प्रेरित किया है।
जैसे
अमेरिका में दासता के खिलाफ लड़ाई, नागरिक अधिकारों का आंदोलन, लैटिन अमेरिका में मुक्ति धर्मशास्त्र, लिबरेशन थियोलॉजी, जो गरीबों और उत्पीड़ितों के नज़रिए से बाइबल की व्याख्या करता है और सामाजिक न्याय पर जोर देता है, इन सब में ईसाई धर्म और ईसाई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
तो ये दिखाता है कि ईसाई धर्म एक ही समय में, मतलब यथास्थिति बनाए रखने वाली ताकत भी हो सकता है और क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली ताकत भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके संदेशों की व्याख्या कौन और किस संदर्भ में कर रहा है।
बिल्कुल, और इसी संदर्भ में वुडहेड आज के सबसे बड़े और शायद सबसे अनदेखे बदलाव पर हमारा ध्यान खींचती हैं। पश्चिम यानी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में, जहां ईसाई धर्म सदियों तक हावी रहा, वहां इसका प्रभाव कम हो रहा है। चर्च जाने वालों की संख्या घट रही है।
हाँ, ये कहानी तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन वुडहेड कहती हैं कि ये पूरी कहानी नहीं है, ये आधी है।
बिल्कुल, असली कहानी कहीं और घट रही है।
कहाँ?
असली कहानी घट रही है ग्लोबल साउथ में, यानी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में। इन महाद्वीपों में ईसाई धर्म में विस्फोटक वृद्धि हो रही है। आज दुनिया के ज्यादातर ईसाई यूरोप या अमेरिका में नहीं, बल्कि इन क्षेत्रों में रहते हैं।
अच्छा।
और ये सिर्फ संख्या का बदलाव नहीं है, ये ईसाई धर्म के चरित्र, उसकी प्राथमिकताओं और उसके भविष्य को मौलिक रूप से बदल रहा है।
तो फिर किताब के अंत में जब वुडहेड ईसाई धर्म के भविष्य पर नजर डालती हैं, तो वो क्या देखती हैं? भविष्य कैसा दिखता है उनके हिसाब से?
भविष्य निश्चित रूप से पश्चिमी या श्वेत नहीं है। ये दक्षिणी गोलार्ध का है, गैर श्वेत है और ज्यादातर रूढ़िवादी या पेंटेकोस्टल किस्म का होगा, ऐसा लगता है। संस्थागत चर्च और व्यक्तिगत अनुभवात्मक आत्मा के बीच का तनाव जारी रहेगा, शायद और बढ़ेगा। लिंग, कामुकता, गरीबी, पर्यावरण और राजनीतिक इस्लाम जैसे मुद्दे ईसाई धर्म के सामने बड़ी चुनौतियां पेश करेंगे।
लेकिन क्या वुडहेड मानती हैं कि ये धर्म अप्रासंगिक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा?
नहीं, ऐसा नहीं लगता। उनका मुख्य तर्क तो यही है कि ईसाई धर्म की ताकत उसकी अनुकूलन क्षमता में है। वो मानती हैं कि ये धर्म बदलती परिस्थितियों में खुद को ढालता रहेगा, नए रूप लेता रहेगा और एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति बना रहेगा, भले ही उसका केंद्र और स्वरूप बदल जाए।
ये पूरी चर्चा बहुत गहरी है और कई परतें हैं इसमें। अगर हमें वुडहेड की किताब से कुछ सबसे जरूरी संदेश या थीम निकालने हों तो वो क्या होंगे?
मेरे लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, विविधता ही ताकत है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अंदरूनी मतभेद कमजोरी होते हैं, लेकिन वुडहेड का तर्क है कि ईसाई धर्म की 2000 साल की यात्रा और वैश्विक फैलाव का राज इसी अंदरूनी विविधता और रचनात्मक अनुकूलन, क्रिएटिव अडैप्टेशन में छिपा है।
रचनात्मक अनुकूलन,
हाँ, ये क्षमता इसे अलग अलग संस्कृतियों और समयों में प्रासंगिक बने रहने में मदद करती है।
दूसरा प्रमुख विषय वो तनाव है जिसकी हमने कई बार बात की, संस्था बनाम आत्मा। एक तरफ नियमों परंपराओं वाला संगठित चर्च है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत अनुभव, भावना, सीधे ईश्वर से जुड़ाव पर आधारित स्पिरिट या बाइबल केंद्रित विश्वास।
सही कहा। वुडहेड दिखाती हैं कि ईसाई इतिहास इन्हीं दो ध्रुवों के बीच के निरंतर संवाद, संघर्ष और संतुलन की कहानी है। ये तनाव ही इसे जिंदा और गतिशील रखता है।
तीसरा और शायद आज के लिए सबसे जरूरी सबक, वो ग्लोबल साउथ में हो रहा जबरदस्त बदलाव है। पश्चिम में धर्म निरपेक्षता बढ़ने की खबरों के बीच हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में ईसाई धर्म न केवल बढ़ रहा है बल्कि नए और ऊर्जावान रूप ले रहा है।
बिल्कुल, भविष्य का ईसाई धर्म अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में आकार ले रहा है और हमें इसे समझने की जरूरत है।
और चौथा, शक्ति के साथ ईसाई धर्म का हमेशा से जटिल और कई बार विरोधावासी रिश्ता रहा है। इसने साम्राज्यों का साथ भी दिया है और क्रांतिकारियों को प्रेरणा भी दी है।
हाँ, ये उत्पीड़कों का धर्म भी रहा है और उत्पीड़ितों की आशा भी। यमी याद दिलाता है कि धर्म का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव कभी सीधा या सरल नहीं होता, ये हमेशा संदर्भ पर निर्भर करता है।
वुडहेड की किताब में कई ऐसे विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ बातें जो मेरे जहन में अटक गई हैं।
हाँ।
जैसे पहला विचार कि ईसाई धर्म को समझने के लिए ये समझना होगा कि ये कभी भी एक एकीकृत धर्म नहीं रहा, बल्कि विश्वासों का एक परिवार है जो यीशु के अर्थ पर लगातार बहस करता रहता है।
ये याद दिलाता है कि बहस और विविधता इसके स्वभाव में है, कोई बाहरी चीज नहीं।
बिल्कुल। दूसरा, ईसाई धर्म का इतिहास संस्था के धर्म यानी चर्च और आत्मा के धर्म ईश्वर का सीधा अनुभव के बीच निरंतर संघर्ष के रूप में पढ़ा जा सकता है। ये उस अंदरूनी इंजन को उजागर करता है जो इसे चलाता है। तीसरा, जो आपने पहले भी कहा, पश्चिम में चर्च की गिरावट पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यवेक्षक सबसे बड़ी कहानी चूक रहे हैं। ग्लोबल साउथ में ईसाई धर्म की अभूतपूर्व वृद्धि, जो 21वीं सदी के लिए विश्वास को मौलिक रूप से नया आकार दे रही है, यह हमें वैश्विक नजरिए की अहमियत बताता है।
हाँ, और चौथा, जो शायद सबसे छोटा लेकिन बहुत गहरा है, ईसाई धर्म हमेशा संरक्षण से ज्यादा परिवर्तन के बारे में रहा है।
परिवर्तन?
हाँ, ये इस परंपरा की मूल प्रकृति की ओर इशारा करता है। ये सिर्फ अतीत को सहेजना नहीं बल्कि भविष्य को बदलना भी चाहता है। ये सारे विचार हमें ईसाई धर्म की जटिलता, गतिशीलता और लगातार बदलते स्वरूप को समझने में मदद करते हैं।
अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, वुडहेड की ये जो समाजशास्त्रीय समझ है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में या दुनिया को समझने में कैसे काम आ सकती है? क्या इसका कोई व्यावहानिक उपयोग है?
बिल्कुल है। सबसे पहले तो ये हमें अपने आसपास मौजूद धार्मिक विविधता को बेहतर ढंग से समझने और उसका सम्मान करने में मदद करता है, चाहे वो ईसाई धर्म के अंदर की विविधता हो, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटेकोस्टल या फिर अलग अलग धर्मों के बीच की। हम ये देख पाते हैं कि लोग जीवन के बड़े सवालों के जवाब अलग अलग तरीकों से ढूंढते हैं, और ये जरूरी नहीं कि एक तरीका सही हो और दूसरा गलत।
दूसरा, ये वैश्विक राजनीति और सामाजिक आंदोलनों को समझने में मदद करता है। जैसे अगर हम जानना चाहते हैं कि ब्राज़ील या नाइजीरिया जैसे देशों में क्या हो रहा है, तो वहाँ बढ़ते इवेंजेलिकल या पेंटेकोस्टल चर्चों के प्रभाव को समझना जरूरी है।
सही बात है।
वुडहेड का विश्लेषण हमें बताता है कि ये समूह क्यों लोकप्रिय हो रहे हैं और समाज पर उनका क्या असर पड़ रहा है।
तीसरा, ये हमारे व्यक्तिक रिश्तों को बेहतर बना सकता है। अगर हमारे दोस्त, पड़ोसी या सहकर्मी ईसाई हैं, तो ये किताब हमें उनसे ज्यादा गहरी और समझदारी भरी बातचीत करने में मदद कर सकती है। ये पूछना कि आपके लिए आपके विश्वास का क्या मतलब है या आप किस तरह की चर्च परंपरा से जुड़े हैं, ज्यादा सार्थक हो सकता है, बजाय ये मान लेने के कि सभी ईसाई एक जैसे सोचते हैं।
और चौथा, ये हमें आलोचनात्मक सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने में मदद करता है। हम किसी भी बड़े जटिल संगठन या आंदोलन को चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक, उसके अंदरूनी हिस्सों, तनावों और बाहरी दुनिया के साथ उसके रिश्तों के नजरिए से देखना सीखते हैं।
हाँ, जैसे हम समझ सकते हैं कि क्यों पर्यावरण या सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ईसाई समुदाय के अंदर भी अलग अलग राय हो सकती है। ये अक्सर उनकी धर्मशास्त्र की समझ और दुनिया में अपनी भूमिका की कल्पना पर निर्भर करता है।
उल पहचान बनाए रखते हुए भी समय के साथ बदल सकती है और लचीली बनी रह सकती है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए वुडहेड की किताब से सबसे बड़ी सीख या सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण विचार यही था कि जिसे हम अक्सर किसी समूह की कमजोरी मानते हैं, यानी अंदरूनी विविधता और मतभेद, वही असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत और लंबे समय तक टिके रहने का राज हो सकता है। ये रचनात्मक अनुकूलन का विचार मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। और ये सिर्फ धर्म पर ही नहीं बल्कि किसी भी संगठन या समाज पर लागू होता है, ऐसा मुझे लगता है।
और मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली शायद ग्लोबल साउथ में हो रहे बदलाव पर जोर देना था। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया का केंद्र लगातार बदल रहा है, और अगर हमें आज की दुनिया को समझना है तो हमें अपना नजरिया पश्चिम से हटाकर वैश्विक करना होगा। यह दिखाता है कि परंपराएं स्थिर नहीं होती, वे जीवित रहती हैं, बदलती हैं और नई जगहों पर फलती फूलती हैं।
और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर श्रोता खुद विचार कर सकते हैं। क्या दुनिया की अन्य महान और दीर्घकालिक परंपराएं, चाहे वो धार्मिक हों, सांस्कृतिक हों या राजनीतिक, क्या वे भी अपने अस्तित्व और प्रासंगिकता के लिए इसी तरह की अंदरूनी विविधता और अनुकूलन क्षमता पर निर्भर करती हैं? सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।